اسی ذات کی چند اور نشانیاں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, اس پہ بعد میں بات کریں گے. سمپل معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو پیئرس میں پیدا کیا. کیسے ہوتے ہیں پیئرز, اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں. پھر مما تنبت الارض, اس میں سے بھی, یعنی اس میں سے بھی پیدا کیا جس کو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم, اور خود ان کی اپنی جانوں سے بھی. ومما لا یعلمون, اور ان میں سے بھی جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا, بلکہ زمین سے جو کچھ اگتا ہے اور ان کے اپنے جسموں میں جو کچھ ہے, اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا, اور وہ بھی جس کو یہ جانتے نہیں. یہ آیت 1400 سال سے قرآن میں موجود ہے. 19th century کے شروع میں, یعنی اباؤٹ 1900 کے جو بگننگ ایئرس تھے, اس میں پہلی دفعہ یہ چیز ڈسکور ہوئی تھی کہ دنیا کی ہر چیز پیئرس کی صورت میں. جوڑے کتنی قسم کے ہوتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا جوڑوں کو سوچیں. ایک تو ہے نا جو ہم مذکر مونس, میل فیمیل, ٹھیک ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سپوسز یا کپلز. اسی طرح آپ دیکھیے پازیٹیو نیگیٹو, ایٹم کے اندر پازیٹیو یا نیگیٹو, الیکٹران پروٹون ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رات ہے تو دن, صبح ہے تو شام, خوشی تو غم, کائنات کی ہر چیز پیئر میں, جاندار بھی اور بے جان بھی. آپ کوئی ایک لفظ لکھیں اور پوچھیں اس کا متضاد ہے کہ نہیں. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمیں اردو کے کلاسوں میں متضاد لفظ پوچھتے تھے نا, لائنیں کتنے یاد کیے ہوئے تھے. صبح ہے تو شام, رات ہے تو دن, اندھیرا ہے تو روشنی, گرمی ہے تو سردی, خشکی ہے تو وہ ہے, باہر ہے تو باہر ہے نا. یہ ساری چیزیں کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے سوائے ایک ہستی کے, قل ھو اللہ احد. خود اس دنیا کا بھی جوڑا ہے, کیا آخرت. یہاں سے یہ ثابت کیا گیا کہ بتاؤ جب یہ دنیا ہے تو پھر آخرت کیوں نہ ہو. کیا اس ذات نے اس دنیا کو ادھورا پیدا کرنا ہے, اور دنیا پزل کا وہ ایک ٹکڑا ہے. جس کے ساتھ آخرت کا پزل نہ لگائے نا, تو اس کی اصل تصویر ہی نہیں دکھتی. جن لوگوں نے صرف اس دنیا کے ٹکڑے کو اتنا بڑا کر کے موج مستی اور دنیا میں لوگوں کو جینے کے طریقے سکھائے, وہ دنیا کی حقیقت پا ہی نہیں سکے. کوئی کہہ رہا ہے کھانے کا نام دنیا, کوئی کہتا ہے فن کا نام, کوئی کہتا ہے سیکس کا نام, کوئی کہتا ہے گھومنے کا نام. آج آپ دیکھیے لاسٹ لوگ ہیں نا وہ, جن کے پاس پرپز آف لائف نہیں ہے, اور فن کر کر کے بھی وہ تھک جاتے ہیں. پھر اسی لیے آپ دیکھیے کہ شادی کو چھوڑا تو فرینڈ شپ بن گئی, بوائش فرینڈ شپ, گرل فرینڈ شپ. پھر اس کے بعد چھوٹتے ٹوٹتے اب ہومو سیکشولیٹی پہ آج کل لگے میں دن رات, اور اس کے آگے جانور بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کرو گندے تعلق. کسی نے بتایا ابھی انہیں دنوں میں کہ اسکولوں میں چھوٹے بچے کسی کلاس کی تھی, اور ان کو ممی ممی پاپا پاپا سکھا رہے. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, تو بڑی اچھی بات ہے, بچوں کے شاید ماں باپ کے حقوق سکھا رہے. کہتی نہیں آپ سمجھی نہیں. میں نے کہا کچھ سمجھا دیں آپ. کہتی ممی ممی پاپا پاپا. چھوٹے بچے اسکولوں میں ہومو سیکشولیٹی سیکھ رہے, یہ ادھر کی بات ہے. اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جا کے کہا کہ میرے بچے کو یہ نہ سکھائیں. کتنا چھپائیں, ٹیچر نہیں چھپا سکھائیں گے, بریک میں بچے بتا دیں گے کل ہم نے یہ سیکھا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے شیطان سر پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے پڑ گیا اب اس وقت کہ ان کو مادر پدر آزاد کر دو. مقصد جو کوئی نہیں, کریں تو کیا کریں. دیکھیں نا بچے کو ایک کھلونا دیں بڑا خوش ہو کے کھیلے گا, دوسرے دن دوسرا اسی کو رکھیں چار پانچ دن میں بور ہو جائے گا, پٹک کے مارتا ہے. پھر دوسرا دیں گے چار دن میں کھیلے گا. پھر ہر کچھ دن کے بعد نئی چیز چاہیے, اور آپ دیکھیں شیطان یہی کچھ کرا رہا ہے, ہر دن ہم سے یہی کچھ کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس دنیا کی حقیقت نہ سمجھ کر اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. مان جاؤ یہ ساری نشانیاں توحید کی ہیں, یہ شرک تمہارا بیکار ہے. جینا مرنا زندگی کے یہ سارے معاملات یہ ایسے ہی نہیں ہیں. تھوڑی سی بھی عقل انسان استعمال کرے تو ہر روز صبح کے ایک ہی کھیل نہیں شروع ہو جاتا. آپ خود بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو آپ بور نہ ہو جائیں. روز صبح اٹھتے ہیں ایک ہی کام, روز شام تک ایک ہی کھیل. کچھ نے سوچا بچے پیدا کر کے پالنا اور ان کو پڑھانا مقصد ہے, وہ بچے بڑے ہو کے بھاگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے. کوئی کہتا ہے اچھا گھر بنا لو, گھر بنا لیا اس کے بعد کیا ہوا, ختم. وہ چیزیں پاس نہیں رہتی, چیزیں اتنی جمع ہو جاتی ہیں آخری عمر میں, لیکن شوق ختم ہو جاتا, انجوائمنٹ نہیں ہوتی. तो हर इंसान सोचे। फिर आप देखिए कि इन आयात में जो जमीन से उगने की बात है ना, बाहर हम क्या सोचते हैं, मट्टी में कुछ डाला और उग गया, हालांकि आप देखिए चार डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना हर फसल के ऊपर लगते हैं। लिख लीजिए, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं ना कि हमने पैदा किया, तो जरा हम भी तो देखें ना कि कोई और तो नहीं ये दावा कर सकता। पहली बात देखिए कि जो जमीन है इसके अंदर अपनी जात से नशोनुमा की कोई ताकत नहीं है। ये आप जानते हैं ना, सूखी मट्टी बेजान होती है, पानी डलता है ना तो उसमें जिंदगी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। आप सादी मट्टी यहां 2 साल पड़ी रख दें, कुछ नहीं होगा। मट्टी में पानी डाल के कीचड़ बन जाने, ऐसे गीली मट्टी रखेंगे ना तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद उसमें फफूंदी लगने लगे, और फफूंदी जिंदगी है, ऑर्गेनिज्म इसी को कहते हैं। ठीक है, जिंदगी मट्टी अपनी जगह से बिल्कुल खुश्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने पानी जैसी बेजान चीज को उसमें डालकर उसमें जिंदगी का वजूद पैदा किया। इसके साथ अल्लाह ताला की मुख्तलिफ चीजें क्या हेल्प करती हैं। पहली बात देखिए कि मट्टी के लेयर्स है ना, ऊपर की मट्टी अल्लाह ताला ने जो रखी है ना इसको निस्बतन नरम रखा है। यानी ये पहला मरहला है कि मट्टी से फसल कैसे उगती है, कि ऊपरी सतह को अल्लाह ने सॉफ्ट रखा है। तभी तो हल्की सी खुदाई करने के बाद जब बीज डालते हैं तो वो बीज की जड़ें उसमें आती हैं, फैलती हैं, मट्टी से चूसती हैं और वो पौधा खड़ा हो जाता है। अगर मट्टी बिल्कुल खुश्क होती, ठीकरी वाली होती, तो क्या हमारा बीज उसमें जाता, या उसके अंदर जो छोटी सी जड़ बनती है वो सूखी मट्टी में आ सकती थी? नहीं आती ना। तो पहला मरहला ये है। दूसरी बात देखिए, जमीन पर पानी का इंतजाम किया, पानी को जज्ब करती है मट्टी। सब कुछ होता, पानी मट्टी पर डालते तो रबड़ की तरह ना चूसती तो क्या पौधा उगता। मट्टी में जज्ब की कैफियत किसने डाली? मालिक ने डाली। फिर तीसरी चीज देखिए कि मट्टी के अंदर बीज भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, फिर भी पौधा ना उगता अगर ऊपर की फिजा में ऑक्सीजन और हवा ना होती। अल्लाह ताला ने फिजा में हवा रखी, जो आसमान से उतरने वाली आफात है उससे मट्टी की हिफाजत करती है, बारिश बनती है, गैसे हैं, यानी ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी एक किस्म का मददगार है। और चौथी चीज देखिए, सूरज और जमीन का आपस का फासला इतना अहम है ये कि इसको अगर कम या ज्यादा कर दे तो एक पौधा भी ना उगे। किस मौसम में क्या उगता है, गर्मी का फल, सर्दी का फल, ये अल्लाह ने कहा। ये चार बुनियादी असबाब हैं जो छुपे हुए हैं। किसान बड़ा खुश है, मैंने बीज डाला, हो गया। अगर मट्टी और ये जमीन, कायनात में ये चार चीजें ना होती तो एक भी बीज उगता? तो लगे थे तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ये सब करने वाला हूं। इसी तरह बच्चे की तख्लीक के भी ये चारों मरहले लिख सकते हैं आप। कोई माँ बाप ये फख्र नहीं कर सकता कि ये हमारी औलाद है। अल्लाह ने मट्टी को नरम किया, बाप का पानी डाला, फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर माहौल ऐसे रखे, माँ के पेट में 9 महीने बच्चा किन मरहले से गुजरता है माँ को तो उसकी खबर नहीं होती। फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने कायनात में आने के बाद बच्चे के लिए इंतजाम किया। जो बंदा तासुब से पाक होगा उसका दिल गवाही देगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जात जो इतना कुछ पैदा कर सकती है उसी का हक है कि मैं उसके आगे जाऊं, उसी के आगे झुकूं। अफला यशकुरून। ये बात भी हम सबको सोचने पे माइल करती है कि सोचो तो सही, इस जात को छोड़कर दूसरों के आगे सर झुकाते हो, उनके आगे माथे टेकते हो। और मैं सोचती हूँ कि इंसान किसान बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, पहाड़ों को क्लाइम कर ले, सितारों पे कमंदे डाले, जो दिल खोल के जाएगा वह अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर निकलेगा। सूरत वाक्या में पढ़ेंगे, अफरायतुमा तहरसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारियून। क्या तुमने सोचा कि ये जो बीज तुम बोते हो क्या इसकी नशोनुमा से दरख्त तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? अल्लाह कहते हैं कि ये हम बनाते हैं, इसलिए उसके आगे झुक जाओ। अब आप देखिए कि ये दलायल है ना अल्लाह की कुदरत के। इसी तरह से अब एक और चीज होगी, आयत 37, वायत लहुमुल लैल, और उसकी निशानी रात है, नस्लुहु मिनहु नहर, उसमें दिन दाखिल होता है। नस्लहा का लफ्ज़ ना सलहा से पीछे भी गुजर चुका है, याद है कहाँ आया था, इन सलहा के लफ्ज़ से, सूरत आराफ। वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु इल्मन, वही शख्स जिसने फिर सांप की केचली पहनी हुई थी, इल्म के बाद भटक गया था। अब बाकी खुद जाके देखिएगा, कुत्ते की मिसाल दी थी अल्लाह ने उसके लिए, हरीस, वहां भी ये लफ्ज आया था, सांप का कुचली बदलना, यानी सांप अपनी खाल बदल लेता या खाल खींचने के लिए लफ्ज आता है। और हकीकत है, आप रात को दिन में और दिन को रात में बदलता देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा, कैसे रोशनी अंधेरे में और अंधेरा रोशनी में बदलता है। फैजा हम मुस्लिमून, तो उस वक्त वो अंधेरे में रह जाते हैं। अभी देखिएगा घर जाने के मेरे आधे पौने घंटे बाद अंधेरा, सुबह अगर आप जल्दी जल्दी में आ रहे हैं, बाहर नहीं कुछ देखा, वहां से इधर आके बैठे और इधर भी अगर शटर गिरे हुए, यहां से बस गाड़ी में जाने तक रोशनी देखते हैं, फिर आपको खौफ आता है, फिर इतना ही रात लंबी है। मुस्लिमून अंधेरों में रह जाते हैं, काली चादर से ऐसे लगता है कायनात को छुपा लिया जाता है। वश्शम्सु तजरीली मुस्तकर्रिल्लाहा, और सूरज चलता रहता है अपने मुकर्ररा रास्ते पर, अल्लाह ने उसको शरीयत दे दी है तुम्हारा ये रास्ता है। वो नहीं नाफरमानी करता कि मेरी मर्जी, व्हाट आई वांट टू डू, नहीं, अल्लाह ने उसको एक ठिकाना दे दिया। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाजा मुकर्रर किया हुआ इसका जो बहुत जबरदस्त बहुत इल्म वाला है। पहले नीचे की जमीन की बातें की है ना, मट्टी जमीन फल, अब आसमानों की बातें, रात दिन, फिर सूरज और अब चांद, वल कमरा और चांद, कद्दर ना हो मनाजिला, हमने उसकी मंजिलें मुकर्रर की, हत्ता दकल उर्जून अल-क़दीम, हत्ता के वो खजूर की पुरानी सूखी टहनी की तरह हो जाता है। ये कौन सा चांद है? 27वीं के बाद का। आप लोगों ने खजूरें लगती देखी हैं? ये जो अर्जुन है ना लफ्ज, ये रुबाई है, आइन रा जीम नून इसका रूट है। खजूर जो है ना वो इस तरह लंबे लंबे सिट्टों पे लगती है, जैसे पाम ट्री होते हैं इसी तरह, आपने कभी देखे होंगे ना। अब वो जब गीला होता है ना वो बिल्कुल सीधा होता है ऐसे, फिर उसके बाद जब उसको दरख्त से उतार लेते हैं खजूरें उतर जाती है ना, तो वो सूखने लगता है, तो वो एक आर्च की तरह टेढ़ा हो जाता है। कई लोगों ने अपने घरों में उसको सजाया भी होता है। उस किली का इशारा है कि चांद पहले छोटा, फिर बड़ा बड़ा, और फिर बिल्कुल सूखी टहनी की तरह पतला सा चांद हो जाता है। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर, ना तो सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को पकड़ ले, वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना रात ही दिन से आगे निकल सकती है। वकुल्लुन फी फलकिन यसबहून, और ये सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं, सब अपने काम पे, कोई किसी को नहीं छेड़ता। हम कहते हैं बड़ा सेट सिस्टम है, ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेशन नहीं है, ये कद्दर ना हो, ये अल्लाह की तकदीर है। वल कमर कद्दर ना, और कद्दर और पीछे क्या का जालिका तकदीर, वक्त पे अंदाजे पे किसको कहाँ कितना रखना है। अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि वो ज़ात कितनी बड़ी है जिसकी बात इस वक्त हम कर और सुन और सुना रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम कर रहे वो, ना कोई मेडल लगा हुआ दिखता है, ना उसके नाम पे कोई ऑस्कर अवार्ड दिखता है, ना लोग उसके शहर में मुबतल हैं। छोटा सा काम लोग करते हैं, सारी दुनिया उसका चर्चा करती है। अल्लाह कहते हैं रात दिन ये हो रहा है। कुल्लु फी फलकी यसबहून, सब एक दायरे में तैर रहे हैं। वायतलहुमन्ना हमलना फिल फुल्किल मशहून, और इनके लिए ये भी तो एक निशानी है कि इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया। इशारा है हजरत नूह की तरफ, क्यामत की बात है ना, तो हजरत नूह का जिक्र आ गया, क्योंकि हजरत नूह की कौम भी एक क्यामत सुगरा से तबाह हुई थी। ये इनमें मुवासलत है कि दुनिया में अल्लाह एक छोटी क्यामत बर्पा कर चुका है कि पूरी दुनिया से 70-80 लोग बचे, तो क्या वो 70-80 को भी खत्म करना अल्लाह के बस में नहीं है। वखलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और हमने इनके लिए इस तरह की और चीजें भी पैदा कर दी जिन पर ये सवारी करते हैं। ये कौन सी चीजें हैं? जो उस वक्त नहीं थी, उस दौर में लोग घोड़ों पे खच्चरों पे सफर करते थे ना, गाड़ियां, रिक्शे, टांगे, लैंड क्रूजर, जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब है मायर कबून, और आगे जाके पता नहीं क्या कुछ होगा। लेकिन याद रखो इन चीजों में को पाकर खो ना जाना, वही नशन गर्क हो, और अगर हम चाहें तो इनको गर्क करके रख दें। फला सरीख लहुम, तो इनका कोई फरियाद रस नहीं होगा, सरखा पीछे पड़ चुके हैं, वला हम युनकज़ून, और ना ही वो छुड़ाए जाएंगे। टाइटैनिक डूब गया, इतना अल्लाह को जुमला बुरा लगा कि इसको तो गॉड भी नहीं गिरा सकता, याद है ना आपको, अल्लाह ने कहा गिराता नहीं, कई सौ साल के बाद उसको निकाल के भी दिखा दिया, लो देखो। फला सरीख लहुम, किधर गए वो सारे कंपनी बनाने वाले और वो एंकर्स, और वो किधर गए? नथिंग। हाँ, आज कश्तियां या समंदरों में दौड़ते हुए जहाज वापस आते हैं ना खैर से अपनी मंजिल पे, तो ये क्या है? इल्ला रहमतम मिन्ना, ये हमारी रहमत है। मतान इला हीन, लेकिन ज्यादा खुश ना होना। अगर आज समंदर के सफर से आफियत के साथ गुजर गए हो, हमेशा के लिए नहीं आए, एक वक्त तक तुम्हें अल्लाह ने फायदा दिया, इस दुनिया से फायदा उठाओगे, दैट्स इट। और ऐसे लोग जब बात को नहीं समझते तो फिर अल्लाह को इन पर गुस्सा भी आता है। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की बड़ाई नहीं मानते। आप देखिए कि जितना ज्यादा एक इंसान अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र करता है, बल्कि आप ये कहना चाहिए कि अल्लाह की कायनात पे गौर करता है, उतना अल्लाह का कुर्ब मिलता है। आज के दौर का प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह की जात पे गौर करते हैं, किधर है वो दिखाओ, है नहीं, नजर क्यों नहीं आता? नजर नहीं आता तो इबादत कैसे करें? अल्लाह कहता है तुम मेरी इस कायनात पे गौर करो तो तुम्हें मेरी सारी बातों का जवाब मिलेगा। अब ये जितनी आयतें पढ़ी है ना, जरा इसको हम एक छोटी सी वीडियो की रोशनी में देखते हैं। इसमें बस ये कि ड्रॉबैक है कि कुछ पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक है या साउंड्स है, कभी वो आए तो उसको फिर आप औजबिल्ला पढ़ लें उसके अंदर। तो इसको देखिए और कुछ फिगर्स नोट कर सकें तो करें, फिर अपने दिलों से पूछते हैं कि अल्लाह की जात कौन है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। कभी आपने सोचा कि अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका हकीकी मतलब क्या है? आए आज हम आपको इसका हकीकी मतलब समझाते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं वो एक आम आदमी के हजम के मुकाबले में 30 अरब खरब गुना बड़ी है, जबकि हमारा सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है। इसके मुकाबले में ईटक और इंडाई नामी मशहूर सितारा हमारे सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद बीटल जूस नामी सितारे का नंबर आता है जो हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। और फिर वी वन कैनिस मेजोरिस नामी सितारे की बड़ाई का तो क्या ही कहना, ये सितारा हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। क्या आपको मालूम है कि जिस कहकशां में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, और हमारी सिर्फ इस एक कहकशां में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से ज्यादा सूरज मौजूद है। और ये कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज में सवार हों जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगाने वाला हो, तो इसको भी हमारी कहकशां को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। अंदाजा हुआ ना कि हमारी कहकशां कितनी बड़ी है? लेकिन नहीं, आए हम आपको अपनी पड़ोसी कहकशां में ले चलते हैं जिसका नाम एंड्रोमेडा है। वो हमारी कहकशां से 2 गुनी है, यानी 2 लाख उंगली साल वसी हो रही है, लेकिन ये भी छोटी है। M81 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 60 गुना बड़ी है, जबकि IC 1011 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है। अब समझ आ रहा है ना अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? हाय, अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जैसे सितारों से कहकशाएं बनती हैं, आपको मालूम है कि इसी तरह कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशा वाकई है उसका नाम जिरको क्लस्टर है, और सिर्फ इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। और मामला अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्लस्टर भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है, और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर है, और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में मौजूद है, जो एक अजीम जाल में मामूली नुकतों की मानी नजर आते हैं। और इन सब को सिर्फ एक जात यानी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अंदाजा हुआ कि अल्लाह कितना बड़ा है? यही वो किबरियाई है जिसको कुरान सूरे जुमर में यूं बयान करता है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही न की जैसी उसकी कदर करने का हक था। उसकी बड़ाई का ही हाल है कि कयामत के दिन जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। ये अल्लाह मुखबर का सही मतलब, और यही वो असीम
को ऐसी तीसरी लुद्रा में नौकर है। अब आप देखिए कि अल्लाह ने तो कायनात दिखा दी, उसके बारे में सुनकर लोगों का एटीट्यूड क्या, चंद आयतों में आप देख लेंगे। आगे देखिए, अब आप आयत 45 से अपना नाम लिखें। इतनी बड़ी जात हमसे छोटे छोटे मुतालबे करती है, और उसका हक है कि हमसे बहुत बड़े मुतालबे करें, और जो मुतालबे भी हैं वो भी हमारे ही फायदे के हैं। लेकिन लोगों का जरा एटीट्यूड देखिए अल्लाह के मामले में। आयत 45, वाइज़ा कील लहुम उत्तकू, जब उनसे कहा जाता है कि डरो, किससे, मा बैना अयदीकुम व मा खल्फकुम, जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आप देख रहे हैं कि लफ्ज इत्तकू के बाद लफ्ज अल्लाह नहीं आया, इसलिए इसके माने में वुसअत पैदा हो गई। आगे पीछे तारीख से सबक लो, आने वाले हालात को देखो। यहाँ पे जो इतना कोई लफ्ज है ना, ये बचने से और डरने की बजाय सोचने, तवज्जो करने और इबरत हासिल करने के लिए। निगाहों के सामने अल्लाह की ये निशानियां रखो, आफाकी आयात अला इल्ला, और पीछे से मुराद नस्ल इंसानी की तारीख, जैसे कौम नूह की बात की गई आयत नंबर 9 में भी हम देख चुके। फमा ताती ही मिन आयत मिन आयाति रब्बिहिम, और नहीं आती इनके पास कोई निशानी इनके रब की निशानियों में से, कायनात की भी और कुरान की भी, दोनों लिख लें, और बल्कि इंसानी जिंदगी के मामलात भी। यानी जब भी इनको कोई साइन दिखता है ना अल्लाह का, इल्ला कानू अन्हा मोरिदीन, मगर वो तो इससे एराज ही करते हैं, कहते नहीं ये तो होना था, ये तो मदर नेचर है, ये तो फिर होता ही है, कभी के दिन लंबे कभी की रातें लंबी, और एक्चुअली साइंस है ये, ऐसे ही है ये, बगैर किसी के चल रहा है। यानी किसी किस्म की निशानी से फायदा नहीं लेते, चलो ठीक है ना लें। वैसा कील लहुम अनफिकु मिम्मा रज़क़कुम अल्लाह, असल रोग और है अंदर, जब इनसे कहा जाता है खर्च करो इसमें से जो तुमको अल्लाह ने दिया। अल्लाह के दिए में से किसको दो, अल्लाह को दो, नहीं, गरीबों को दो, भूखों को खिलाओ, यतीमों को दो, सोशल वर्क के काम करो, अल्लाह की मखलूक को जहन्नुम से बचाओ, अल्लाह के रास्ते में लगाओ। अब जरा जवाब सुनिएगा, ये है असल में अंदर की इस बीमारी जो यहाँ खुल गई। قال الذين كفروا, तो ये काफिर कहते हैं, للذين آمنوا, अहले ईमान से, यानी ईमान वाले जब इनको दावत देते हैं नेकियों की तो क्या कहते हैं, أنطعم من لو يشاء الله أطعمه, क्या हम उनको खिलाएं जिनको अल्लाह चाहता तो खुद खिला लेता। नऊज़ु बिल्लाह। दलील क्या कहते हैं कि अच्छा भाई तुम कहते हो अल्लाह हर चीज पे कादर है, तो वहां सर्दी से लोग क्यों मर रहे हैं सीरिया में, और वहां बॉस्निया में लोग भूख से क्यों मर रहे हैं, और अफ्रीका में कहत क्यों आया। अगर तुम्हारा अल्लाह कादर है तो वो खुद खिला ले, तो जब अल्लाह नहीं खिला रहा तो हम क्यों खिलाएं। इनान तुम अल्लाह फी दलाल मुबीन, तुम तो खुद ही सरीह गुमराही में पड़े हुए हो। ये है उन लोगों का जवाब जिनको अल्लाह के दिए में से भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुश्किल लगता है। वो नेकी के मौके को अपने ऊपर एक तावान समझते हैं, बोझ समझते हैं कि तुम क्या बातें करते हो, हमको इनके लिए थोड़ी कमाते हैं। अगली आयतों में क्यामत का मंजर है जो हम अगले सबक में देखेंगे, आंखें खोलने वाला मंजर है। यहां तक बात का खुलासा क्या है, जब अल्लाह की कदर नहीं होती ना तो ना अल्लाह के रास्तों की कदर होती है, ना अल्लाह के बंदों की कदर होती है, ना अल्लाह की किताब की कदर होती है। बड़ी बड़ी नेकियां लोग छोड़ देते हैं, और छोटे से छोटे गुनाह भी करने से लेकर बड़े बड़े गुनाहों तक भी अपने आप को मुलव्वज़ कर लेते हैं कि क्या फर्क है। और शिर्क होता ही तब है जब अल्लाह की कदर नहीं होती। इतनी कायनात वाले रब को बंदा जानता हो तो क्या किसी कब्र में पड़े हुए शख्स के आगे जा सकता है, और अपने जिससे 5-6 फुट के जिस्म के इंसान से जाके कोई मदद मांग सकता है। हम तो इंसानों में खोए रहते हैं, उसने ये नहीं किया, उसने ये कर दिया। गुण उनके कहते हैं जो हमें कुछ दे देते हैं, अच्छा हुआ जो हमारे साथ अच्छा करे, और जो हमारे साथ बुरा है वो तो अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए जरूरत है कि हम इन सब चीजों पर गौर करें। कुछ फिगर्स 2-4 लिख लीजिए। ये जो सूरज और चांद की जो हमने बातें पढ़ी थी, कुछ तो आपने इस वीडियो में देखी, इसको बाद में दोबारा देख के इसमें से लिखना चाहे तो लिख लें। ये जो काना तजरीली मुस्तकर्रिल्लाहा, सूरज कैसे घूम रहा है 20 किलोमीटर जो तकरीबन 12 मील बनते हैं फी सेकंड। सूरज एक सेकंड में 20 किलोमीटर का सफर तय करता है। انشاءاللہ آپ کو کل کچھ اور فگرز لکھا دوں گی. ہم نے کوئی فزکس نہیں پڑھ رہے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کر کر کے ہمیں کیا کہتا ہے کہ تم بھی اس کے بن جاؤ, اس کی طرف چلنے لگ جاؤ. کس طرح ہم ہلتی جلتی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سائلنٹ لگتی ہیں, تو اسی طرح اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھ کے جان لو کہ یہ زمین تمہارے آثار لے رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے, اپنی بڑائی کا احساس دلائے اور ہم اس کے حکم کو ماننے والے بن جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.